ओम शांति। ये हमारी पाठशाला विचित्र पाठशाला जिसमें सुबह शाम क्लास में बैठ के पढ़ाई करना, लेकिन हमारी सच्ची सच्ची पढ़ाई कब होती है? और हमारी पढ़ाई ऐसी नहीं है कि हम किताब लेके बैठ जाए और जो भी पढ़ते हैं उसको याद रखें, लेकिन हमारी पढ़ाई ऐसी है जिस पढ़ाई में हमको पढ़ना एक घड़ी है और दूसरी ही घड़ी में रिसर्च करना, एक्सपेरिमेंट करना, यानी कि उसको आजमा के देखना, आजमा के देख के उसकी क्या रिजल्ट है, उसका नतीजा क्या होता है, उसको देखना, न सिर्फ देखना लेकिन उसको नोट करना, नोट करना, क्योंकि साइंटिस्ट जो होते हैं, वैज्ञानिक क्या करते हैं, वैज्ञानिक का काम ही है रिसर्च करना, एक चीज लेना, दूसरी चीज लेना, फिर उसको मिलाना, उसको कुछ केमिकल्स डालना और फिर क्या होता है उसको साक्षी होकर देखना, और फिर ये करते हैं तो दूसरा कुछ होता है, दूसरा करते हैं तो फिर तीसरा कुछ होता है। इसी प्रकार से हमारी जीवन भी, आप ये नहीं समझना कि आप सिर्फ माताएं हो या बहने हो या भाई हो, पढ़े लिखे नहीं हो, सबसे बड़े से बड़े वैज्ञानिक कौन है? हम बाबा के बच्चे सबसे बड़े वैज्ञानिक। ये विज्ञान ऐसा है जिसको हमको, जिसमें हमको बुद्धि की जरूरत नहीं है। बाबा सुनाते हैं, उनको सुनते सुन के उसको जीवन में लाना और देखना के जीवन में लाने से कितना परिवर्तन आता है, कितनी प्राप्ति होती है, कितना सुख मिलता है। वो परिवर्तन भी किस बात का? दुख से सुख, अशांति से शांति, सुखी जीवन, प्रेम बिना जीवन में प्रेम लाना, ये है हमारा एक्सपेरिमेंट, ये है हमारा रिसर्च। कौन सी बातें हैं जो हमको संपूर्ण सुख अनुभव करने में विघ्न रूप बनती हैं? इसको भी चेक करना, देखना और समझना, और फिर समझ के उसको दूर करना, फिर देखना कहां तक सुख की प्राप्ति हुई, और जितनी चाहते उतनी हुई, अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। इसलिए ये सब बातों को साक्षी होकर देख के उसका परिणाम क्या है, जो भी हम अभ्यास करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम करते हैं, जो भी बाबा हमें सुनाते हैं, उनको सोच के उसका परिणाम आत्मा के ऊपर क्या होता है, उसका अभ्यास करके आत्मा के ऊपर परिणाम क्या होता है। तो ये वैज्ञानिक जीवन हमारी ऐसी है, हमको एक घड़ी भी, एक सेकंड भी हम भूल नहीं सकते हैं। और आजकल क्या खास हम क्या देख रहे हैं संसार में, दुनिया में दुख और अशांति कितनी बढ़ती जाती है, और जो भी बड़े बड़े लोग, जो जिनको बड़े माना जाता है दुनियावी हिसाब से, चाहे पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट में नौकरी करने वाले हैं, या धार्मिक नेताएं हैं, और उनके भी बड़े बड़े जो लोग हैं, आज दुनिया में कितनी अधीरता है, कितने मन में अस्थिरता है, मतलब किसी के भी जीवन में कोई भी बात स्थाई नहीं है और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कल क्या होने वाला है। ऐसे जीवन में, ऐसे समय पर हमारे जीवन में हमको किस प्रकार का पुरुषार्थ करना है। कई हैं एक साल से ज्ञान में होंगे, कोई 10 साल से 20 साल से 30 साल से, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। भले कितना भी समय ज्ञान में है कोई, लेकिन हम सब के पुरुषार्थ की लेवल अभी एक प्रकार की होनी चाहिए। तो आप कहेंगे हम तो अभी, आप में से कोई कहेगा, सब नहीं कहेंगे, कोई कहेगा हम तो नए हैं, हम तो अभी अभी ज्ञान में आए हैं, अभी अभी सीख रहे हैं, तो हम कैसे जो बहुत समय से आए हैं उन जैसा पुरुषार्थ कर सकते हैं। दादी जानकी हमेशा हमको सुनाती थी कि हम लोगों को भट्टी में 14 साल लगे, हमारे 14 साल भट्टी में हुए, और आप लोग हमने जो 14 साल में किया वो 14 दिन में कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, हो सकता है? 14 साल का पुरुषार्थ 14 दिन में हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है भाई, क्या विचार है? नहीं हो सकता है, हो सकता है, हो सकता तब है, हो सकता है, मैं समझती हूँ हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहती हूँ मैं कर रही हूँ, हो सकता है, लेकिन उसके लिए, उसके लिए भी अगर हम तैयारी करेंगे कि हमारे मन की वृत्ति, हमारा इरादा इतना संपूर्ण रीति से परिवर्तन हो कि हमारे जीवन में और कोई लक्ष्य नहीं। वो कहानी बताते हैं ना कि जैसे कोई तीर मारना है तो और सब आसपास की चीज नहीं दिखाई देनी चाहिए, जिस चीज पर तीर लगाना है वही चीज दिखाई दे और कुछ दिखाई देना नहीं चाहिए। तो अगर हमारे में भी, हमारी बुद्धि में भी, हमारी इंटेंशन, हमारे इरादे में भी वहां तक रियलाइजेशन है कि हमको और कुछ नहीं करना है, 14 दिन बस इसमें ही देने हैं, तो हो सकता है। तो कौन से अभी पुरुषार्थ, चलो आप कहेंगे 14 दिन हम नहीं दे सकते हैं, तो डेली दिन प्रतिदिन हमारे पुरुषार्थ की लेवल कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार का हमारा पुरुषार्थ हो। अभी मोटे रूप के पुरुषार्थ का समय तो गया, मोटे रूप की चेकिंग का समय भी गया। कल मैं किसी को सुना रही थी कि वैसे पुराने जमाने में चार्ट लिखते थे ना, क्लास में गए, टाइम पर गए, झुटका आया या नहीं आया, अमृत वेले उठे नहीं उठे, तो कितने कौन से टाइम पर उठे, ये चार्ट की चेकिंग अभी पुरानी चार्ट हो गई। ये तो अभी नेचुरल बातें होनी चाहिए हमारे जीवन में, इसीलिए कि जितनी जितनी ये बातें हमारे जीवन में नेचुरल होंगी उतनी उतनी ये सब बातें हमारे जीवन में देख के औरों को प्रेरणा मिलती है। मधुबन में आते हैं विदेशी खास आते हैं तो बहुत प्रभावित होके जाते हैं। क्यों प्रभावित होके जाते हैं? क्योंकि मधुबन में मधुबन के भाई बहनों की धारणा को देख के उनको बिल्कुल वो भासना आती है कि ये लोग जो कहते हैं वो करते हैं। मधुबन के भाई बहनों को हम देखते हैं कितनी अथक सेवा करते हैं, लेकिन उनका ध्यान भी है ज्ञान और योग के ऊपर, छोटे छोटे संगठन बना के उसमें ध्यान देते हैं। तो हमें भी अभी ऐसा पुरुषार्थ करना है कि हमारी चेकिंग अपने लिए एकदम सूक्ष्म रूप में होनी चाहिए। तो मैं 2-3 बातों का मिसाल आपको सुनाऊंगी कि सूक्ष्म चेकिंग माना क्या। तो एक तो है हमारे पुरुषार्थ में सच्चाई। पुरुषार्थ में जो बात जैसी है ऐसे अपने आप को समझना, सिर्फ बुद्धि चला के मनाने से नहीं, मनाना नहीं है अपने आप को, मना के अपने आप को समझा के हम तो ठीक ही हैं, ये तो चलता ही है, औरों का भी ऐसा ही है, अभी तो हम नए हैं ना, ये सब चलाने की बातें। नए भी कहते हैं, पुराने भी कहते हैं। पुराने कहेंगे और कौन है ऐसा जो हम भी करते हैं। सच्चा सच्चा पुरुषार्थ माना हरेक घड़ी, सच्चाई माना हरेक घड़ी हम अपने आप को साक्षी होकर देखें। यानी ये अभ्यास नेचुरल हो कि अगर मैं किसी से बात कर रही हूं तो मेरी स्मृति क्या है उस समय, अगर मैं कुछ कर्म कर रही हूं तो मेरी स्मृति क्या है उस समय, अगर मेरे मन में विचार भी कुछ आते हैं तो ये विचार क्यों आया, इस विचार कैसे, ये विचार कैसे आए। कभी कभी अच्छे विचार होते हैं, कभी कभी अच्छे नहीं भी होते हैं, विचार कहो संकल्प कहो नहीं भी होते हैं, तो उस समय भी उसी समय हम अपने आप को कैच करें। कि दादी कहती थी सोच के सोचो माना सोचने से पहले ध्यान जाए कि अगर ये मैं सोचने पर जा रही हूं या जा रहा हूं तो किस प्रकार का सोच है। लेकिन इस प्रकार की अपने आप को चेकिंग हम तब कर सकते हैं जब हमारे में ये कला हम धारण करते हैं कि सदा अपने आप को साक्षी होकर देखना, यह है सच्चाई, नेचुरल हो जाए। वैसे जितना जितना हम आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करते हैं तो वैसे होता है, एक्चुअली होता है, और जितना अपने आप होता है वो तो एक बात है, लेकिन हम जितना एक्स्ट्रा ध्यान देंगे तो और ही नेचुरल होगा। तो अपनी स्व की चेकिंग और ऑब्जर्वेशन, खुद को ऑब्जर्व करना चलते फिरते बैठते, और ये हर एक एक घड़ी की बात है। और चलो सारा समय नहीं भी कर सकते हैं तो मतलब ध्यान संकल्प आना चाहिए, याद आनी चाहिए कि हमको ये करना है। जितना जितना ये अभ्यास बढ़ता जाता है उतना उतना हमारी आत्म अभिमानी स्थिति भी नेचुरल बनती है। और ना आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास क्या है, वैसे एक है निराकारी स्थिति, एक है देही अभिमानी बनने की स्थिति, एक है विदेही बनने की स्थिति। तो इन सब स्थितियों में कौन सी स्थिति जो है, वैसे तो सब स्थिति का अभ्यास करना है, लेकिन इसको अगर आप इसके बारे में कई हैं जो नोट्स ले रहे हैं तो आप इसको कभी बैठ के सोचें और लिखें कि अगर मैं आत्म अभिमानी हूं तो मेरे अंदर उस समय क्या अनुभूति है, उस समय मेरे वाइब्रेशन क्या है, उस समय मेरी एनर्जी किस प्रकार की है। अगर आप इसको देखेंगे ना, चेक करेंगे ना, तो आजकल साइंटिस्ट वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च ये करते हैं कि जो भी हम करते हैं ना, न सिर्फ उसकी याददाश्त आत्मा में आती है, न सिर्फ उसके संस्कार बनते हैं, लेकिन संस्कार के लिए हम समझते हैं कि संस्कार आत्मा में है, लेकिन उस संस्कार की असर शरीर पर भी पड़ती है। आपने देखा होगा कई बातें हैं हम रिपीटेडली घड़ी घड़ी करते आते हैं तो फिर हमको सोचना भी नहीं पड़ता है, अपने आप ही शरीर उस समय चलने लग पड़ता है, वही काम करने लग पड़ता है। और सबसे अच्छा एग्जांपल है ड्राइविंग का, शायद कुछ बहनों को इसका अनुभव नहीं होगा लेकिन हमने अनुभव किया है, ड्राइविंग करते हैं तो सोचना नहीं पड़ता है कि अभी क्लच दबाओ, अभी गाड़ी गियर में डालो, अभी इस प्रकार से टर्न करो, अपने आप जैसे हाथ पांव चलते हैं, सोचना नहीं पड़ता है, इतना नेचुरल हो जाता है। ब्रेक लगानी है तो भी जैसे अपने आप पांव जाएगा, समय नहीं लगता है संकल्प और पांव को चलने में, एक जैसे एक ही समय पर। क्योंकि जो बात हम करते आते हैं, रिपीटेडली करते आते हैं, तो उसकी याददाश्त मेमोरी शरीर में भी आ जाती है। कहते हैं कि शरीर के सेल्स में मेमोरी है, याददाश्त है। इस कारण से 95% हम जो चित्त हैं, जिसको हम जानते नहीं हैं, देख नहीं सकते हैं, उससे उसके आधार से हम चलते हैं, और 5% ही हम जानबूझ के जो करते हैं, वो सिर्फ 5% में है। समझी मेरी बात आपने? 95% अनकॉन्शियस, यानी के चित्त के ऊपर जो बातें लगी हुई है उसके अनुसार हम कर्म करते हैं। यानी कि हमको पता भी नहीं है कि हम कुछ क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे हमारा हाथ पांव चलता है। तो आप सोचिए, इसका मतलब है कि 95% हम पास्ट में हैं, अनकॉन्शियसली, अनजाने 95 पास्ट में है। और बाबा क्या कहते हैं पास्ट के बारे में? बाबा कहते हैं पास्ट इज पास्ट। तो जो हमको ध्यान में भी नहीं हो उसको हम कैसे भूल सकते हैं? जो हमको पता भी नहीं चलता है, इतना अनकॉन्शियस, उसको हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? इसको परिवर्तन करने का एक ही तरीका है, वो तरीका है सबसे पहले तो आत्म अभिमानी बनना। लेकिन आत्म अभिमानी स्थिति मैं किसको कहती हूं? ऐसे नहीं सिर्फ यहां बिंदी बन के बैठ गए और प्रयत्न करते रहे, मैं बिंदी हूं, मैं बिंदी हूं, मैं बिंदी हूं, ये नहीं, ये ऊपर ऊपर का हो जाएगा। मैं बिंदी हूं तो उस समय मेरी भासना क्या है? मैं एक शुद्ध, पवित्र, श्रेष्ठ, शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो उस समय मेरी स्मृति क्या है, मेरी कॉन्शियसनेस क्या है? जितना जितना ये शुद्धता का हम अनुभव करते हैं, शुद्ध माना इस घड़ी पर, न पास्ट न भविष्य, एक सेकंड इस घड़ी पर, इस शुद्ध स्थिति में, तो उस समय न पास्ट की कोई असर है, न भविष्य का कुछ संकल्प है। जितना जितना हमारे में ये अभ्यास बढ़ता जाता है, उतना उतना हमारे चित्त की सफाई होती जाती है। दादी हमेशा कहती थी, चित्त की सफाई करो, चित्त की सफाई करो, चित्त सफाई साफ होना चाहिए। और चित्त की सफाई फिर ये भी हम अपने संकल्प और ये अभ्यास आत्म अभिमान स्थिति का इस प्रकार से अनुभव करके फिर बाबा को याद करें। बाबा तो है ही एकदम शुद्ध, निस्वार्थ प्यार करने वाले। बाबा बैठ के ये नहीं सोचता है, आज तुमने बहुत सेवा की ना, इसलिए मैं तुमको प्यार करता हूं। लेकिन हम सेवा करते हैं तो हमारी फीलिंग्स में क्या आता है? जैसे भगवान की फीलिंग्स होती हैं, सबको मिले, सबको मिले। हमारे में हम सेवा करते हैं तो हमारे में निस्वार्थपने की भावना पैदा होती है। भगवान में भी भगवान निस्वार्थ हैं, लेकिन हम जितना जितना सेवा करते हैं और उसमें कुछ भावना नहीं रखते हैं, तो वो जो अंदर की हमारी साफ चित्त है, उस चित्त से वो चित्त जैसे भगवान के समान हो जाती है। बाबा के समान हमारी चित्त है तो बाबा को याद, हमको बाबा को याद करना बिल्कुल सहज। कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जो जैसा होता है ना उसको उसी प्रकार की आकर्षण होती है। जो जिस प्रकार का होगा, जो गुण वाला व्यक्ति होगा उनको गुण वाले व्यक्ति की ही आकर्षण होगी। जो देही अभिमानी होगा ना उसको देही अभिमानी व्यक्ति की ही आकर्षण होगी। जो देही अभिमानी वाला होगा उनको देही अभिमानी वाली व्यक्ति से भासना आएगी, तो उसको भी उसी की ही आकर्षण होगी। तो हमको क्या करना है, हमको हमारे चित्त को, मन को, स्वभाव को बाबा जैसे बनाना है। बाबा कहते हैं ना बाप समान बनो। बाप समान माना क्या, ऐसे नहीं सिर्फ भविष्य में कब कब बन जाएंगे, अभी आज इस घड़ी किसी के साथ व्यवहार करते हुए, और ये हमको भासना, हमको फीलिंग आती है कि हमारी चित्त इतनी साफ है, शुद्ध है, तो उस घड़ी हम जैसे बाबा के समान हैं। लेकिन अगर हमको ये सोचना ही है हम तो बाबा के समान हैं, अगर ऐसा डिलिबरेटली सोचेंगे तो अभिमान आ जाएगा। अभिमान आ गया फिर नीचे, तो ये जो अनकॉन्शियस अनजाने की भी यादाश्त है, उन यादाश्त को भूलने के लिए ऐसी शुद्ध स्मृति बना के रखना, और इस स्मृति, शुद्ध स्मृति से बाबा को याद करना। अगर मैं अपनी पर्सनालिटी से, अपने संस्कार अनुसार, अपने जरूरत अनुसार मैं बाबा को याद करेंगी, तो ये याद किस प्रकार की हो जाएगी, भक्ति वाली याद। भक्ति में लोग क्या करते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, ये जरूरी है, ये दुखी है, तो ये सब, और ये है अपने पर्सनालिटी, यानी कि हम हमारे में हमारे जो संस्कार हैं, संस्कार अनुसार बाबा को याद करना। तो हमारे में और भक्तों में क्या फर्क, कुछ नहीं फर्क हुआ ना। तो हमको इसलिए बाबा कहते हैं कि एक्यूरेट याद क्या है, एक्यूरेट याद नहीं मंदा बैठ के बाबा को याद करती हैं। एक्यूरेट याद है मैं शुद्ध आत्मा, संस्कारों से अलग। न ऐसे भी नहीं कि मैं याद करूं भगवान को तो मुझे ये प्राप्ति होगी। अगर हम प्राप्ति की लालच से भी याद करते हैं, भले हमको पता है कि हमको प्राप्ति मिलती है, लेकिन लालच से याद करना वो भी किस प्रकार की याद हो गई, भक्ति के प्रभाव की याद। तो सच्ची याद माना, सच्ची याद माना मैं भगवान को इसलिए याद करती हूं कि मैं, मेरे को भगवान के याद की खींच होती है, क्योंकि हम समान हैं, हम एक जैसे हैं, हमारा संबंध ही है बाप और बच्चे का, इस कारण से हमें खींच होती है। ऐसी याद जब हम करेंगे बाबा को तो इस याद से चित्त साफ होता है। और जितना जितना चित्त साफ होता जाता है, इतना हम देखते हैं, आजकल मैं अपने आप को चेकिंग कर रही हूं, कोई भी बात की अगर कुछ होता है, छोटी सी बात होती है, छोटी सी बात होती है, तो अगर अंदर से कोई रिएक्शन निकला, इसका मतलब कि हम वो स्थिति में नहीं है, वो स्थिति जिसमें हम अपने आप को अंदर से वो शुद्धता में रखे, यानी मैं प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हूं। थोड़ी भी मेरे को पास के संस्कार की असर आ गई तो मैं प्रेजेंट में नहीं हूं, वर्तमान समय में मैं यहां नहीं हूं। वर्तमान आजकल तो बहुत इस बात का अभ्यास, विदेश में भी बहुत बातें करते हैं इसके बारे में, पावर ऑफ नाउ, द पावर ऑफ नाउ। नाउ माना प्रेजेंट, अभी अभी अभी, हर एक घड़ी हमको इस घड़ी में ही रहना है। एक सेकंड जो हुआ, एक मिनट हुआ, उसमें भी नहीं जाना है, ना आने वाली एक सेकंड है उसमें भी नहीं जाना है। दिस इज वेरी पावरफुल। जितना जितना हम प्रेजेंट में रहते हैं, सेकंड बाय सेकंड प्रेजेंट में रहना, तो हम तुरंत अपने आप को चेक कर सकेंगे। जैसे कि आज मैं अमृत वेले बैठी थी, शायद कोई मुंह माता यहां होगी, लेकिन जैसे ऐसे आके बैठ गई जैसे कि मेरे ऊपर गिरने लग पड़ी, तो मैं तो योग में बैठी थी, तो थोड़ा मैंने ऐसे करके देखा तो मैंने अपने को तुरंत कैच किया कि मैंने कैसे देखा। थोड़ा भी दृष्टि ये समझा, ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों करती है, ये भी गलत, ये भी मेरी गलती, ऐसी छोटी छोटी, आप समझेंगे ये तो छोटी गलती है ना, ऐसी छोटी छोटी गलती भी कैच करेंगे ना तो अपने मन को साफ रख सकेंगे। और सूक्ष्म पुरुषार्थ माना कोई भी डिस्क्रेपेंसी, माना कोई भी बात ऐसी होती है जो ठीक नहीं है, तुरंत अपने आप को देखना। चाहे शरीर की भी बीमारी आती है, भले शरीर की बीमारी आती है वो तो हिसाब किताब है, हम जानते हैं, लेकिन कभी कभी चलते चलते ठोकर लग गई, गिर पड़े, तो हम समझे कि चलो ठोकर लग गई, गिर पड़े, क्या बड़ी बात है। लेकिन उस समय भी मैं हमेशा अपने आप को चेक करूंगी, क्यों मुझे ठोकर लगी, उस समय मैं क्या सोच रही थी, क्या मेरे संकल्प चल रहे थे कि मेरा ध्यान नहीं गया और मेरी ठोकर लगी। चलो शारीरिक रीति से कोई प्रॉब्लम है, पांव में तकलीफ है, पांव में कुछ दर्द है, या घुटने ठीक नहीं है, कुछ भी है, तो भी उस समय, आजकल मैं क्या करती हूं, कोई भी अगर कुछ दर्द होता है ना तो मैं उस दर्द से वार्तालाप करती हूं। शरीर में कुछ दर्द होता है ना तो उसको उसके साथ वार्तालाप करना, क्यों तुम आया है, क्या हुआ, मैंने क्या किया कि तुम मेरे पास आया, या मैंने क्या नहीं किया कि तुम मेरे पास आया, अभी तुम मेरे से क्या चाहता है, मैं क्या करूं ताकि तुमको मैं छुट्टी दूं, वो मेरे शरीर में अलाइनमेंट आए, मेरे शरीर में जैसे कि एक प्रकार की एकता आए। कोई भी दर्द होता है तो हम क्या करते हैं, तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं, डॉक्टर दवाई लिखने के लिए बैठ जाएंगे, डॉक्टर का तो काम है दवाई देना, लेकिन मैं, मेरे को सिर्फ दवाई लेनी है, चलो दिखाना है। मैं समझती दादी जानकी ने कहा था या अव्यक्त बाप दादा ने कहा था, कोई भी बीमारी होती है उसमें 5% दवाई की जरूरत होती है, 5% यानी 5% दवाई असर करती है, 45% 45% दुआएं काम करती हैं, और 50% योग बल काम करता है। तो उस समय में, लेकिन कुछ बीमारी आई, कुछ तकलीफ हुई, तो हम क्या करेंगे, डॉक्टर के पास चले जाएंगे और समझेंगे कि दवाई दे तो मेरी दुआएं, मेरी बीमारी चली जाए, दुख पूरा हो जाए। तो उस समय मैंने अपने आप को चेक किया और मैंने ये सोचा कि मैं अपने मन की स्थिति में क्या लाऊं, क्योंकि अगर सहनाज, जैसे कि मैं वैसे मैं रूटीन चेकअप के लिए गई थी, आज थोड़ा इस आंख में दर्द है और थोड़ा सूजन है, तो मैं गई थी तो मैंने पूछ लिया, तो डॉक्टर ने मेरे को दूसरे डॉक्टर के पास भेजा, आंखों के डॉक्टर के पास भेजा। बिल्कुल मेरे को नहीं जाना था, फिर भी मैं गई। तो उसने तो देख के बोला, वो लिखने लगा। मैंने कहा मेरे को दवाई नहीं लेनी है। तो डॉक्टर को अच्छा नहीं लगा, थोड़ा चिढ़ा, कहता है कि मैं तो डॉक्टर हूं, मैं कोई हीलिंग करने वाला नहीं हूं। मैंने कहा ठीक है, मैं ये नहीं कहती हूं कि आप मेरे को हीलिंग कर दो, लेकिन मुझे जानना है कि प्रॉब्लम क्या है। अगर मुझे पता चले प्रॉब्लम क्या है तो मैं प्रॉब्लम को ठीक कर सकती हूं ना। तो इस प्रकार से अपने मन को यूज करना, अपने योग बल को यूज करना। मैं ये नहीं कहती हूं आप सभी आज से डॉक्टर के पास नहीं जाना, लेकिन पहले अपने आप को पूछना कि अभी मैं क्या करूं। और आजकल तो विदेश में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चलते हैं इस प्रकार के, कि अगर कोई बीमारी होती है तो उसका कुछ संस्कार पर, सुसंस्कार के कारण, कोई मानसिक स्थिति के कारण, कहते हैं घुटनों में अगर दर्द है ना, उसका कनेक्शन है अभिमान से, गुस्से, लिवर का प्रॉब्लम है ना, तो कहते हैं इसका कनेक्शन है गुस्से से। यानी कि अगर में अब हमारे में कोई नेगेटिव बातें हो, चलो होती हैं, और उसका रिएक्शन हमारे में, हमारे से गुस्से का निकलता है, और गुस्से को हम दबाते हैं तो उसका असर लिवर के ऊपर पड़ता है। और इसमें भी समझो आंखों की, और हम ब्राह्मणों के लिए तो खास, जब हम पुरुषार्थ के मार्ग पर चल रहे हैं और हम देखते हैं सचमुच अगर पुरुषार्थ में कुछ कमी है, देखने का तरीका कुछ टेढ़ा हो जाता है, इसलिए मैं समझती हूँ राइट आई, राइट आंख में दर्द है, तो मैं क्या है जो ठीक नहीं देख रही हूं, क्या मैं गलती से देख रही हूं जिसके कारण मेरे को आंख में दर्द है, या मेरे को कैसे देखना चाहिए ताकि वो दर्द चला जाए। इस प्रकार की सूक्ष्म चेकिंग, चेकिंग तो क्या, सूक्ष्म पुरुषार्थ। और पता है ना आपको कि आजकल जो भी हो रहा है ना, जो ऊपर जो जो जिसको हम इन आंखों से देखते हैं और बुद्धि से समझते हैं, ये सब बातें सब ऊपर ऊपर की है। यानी कि रियली पूछा जाए तो हमको किसी को कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है, यानी कि कोई भी बात का राज नहीं पता है। अगर हम बुद्धि चला के सोचेंगे तो राज कभी पता भी नहीं चलेगा। और चक्र के अभी संगम युग के अंत के समय के अनुसार अगर हमको समझना है क्या हो रहा है, तो हमको बुद्धि नहीं चलानी है, समझने के लिए उसके अंदर, उसके नीचे, उसके बिलो, उसके अंडरनीथ, यानी कि ऊपर ऊपर की बात से अंदर जाना, उसके पीछे जाना। लेकिन वो बुद्धि से नहीं जा सकते हैं, वो सिर्फ जा सकते हैं शांति और साइलेंस के अभ्यास से। साइलेंस का अभ्यास माना ये नहीं सोचना नहीं है या सिर्फ मुख से बंद रहना, मुख से बोलना नहीं। साइलेंस का अभ्यास माना कोई भी कर्म इंद्रियों से कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर न जाए, चाहे आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, हाथ है, पाँव है, और चमड़ी, चमड़ी भी वाइब्रेशंस कैच करती है। अगर हम इंद्रियों के आधार से अपने अंदर की स्थिति बनाते हैं तो वो टेम्पररी, अल्पकाल की स्थिति हो जाएगी। बाहर की स्थिति बदली तो हमारी अंदर की स्थिति भी बदल गई। लेकिन साइलेंस, वो साइलेंस जिसमें मन, मन में एक ही संकल्प हो और हम उस समय एक संकल्प के अनुभव में व्यस्त हो जाएं। साइलेंस माना ये नहीं सोचना नहीं, बोलना नहीं, देखना नहीं, सुनना नहीं, करना नहीं, ये नहीं है साइलेंस। साइलेंस माना ये सब करते हुए भी अंदर से हम अपनी अंदर की स्थिति जो है वो हमारे इंद्रियों से जो रस मिलता है उसके आधार से नहीं है। इंद्रियों के रस से परे आत्मिक स्थिति, परमात्मा की याद की स्थिति से हमारी साइलेंस, और सचमुच हम भगवान का ऐसे अनुभव करेंगे तो कुछ और कुछ अनुभव करने का रहता ही नहीं है। ठीक बात है ना? संपूर्ण रीति से ऐसे बाबा की याद में हम बैठ जाए और इतना बाबा की याद में व्यस्त हो जाए, लव में लीन हो जाए, तो कर्म इंद्रियों का रस खींच ही नहीं सकता है। जब हम जबरदस्ती करते हैं तो समझेंगे हमको ये देखना नहीं है, हमको ये सोचना नहीं है, ये सुनना नहीं है, ये खाना नहीं है, ये टच नहीं करना है। लेकिन अंदर की ये जो रिच, बहुत ही जैसे कि एकदम शक्तिशाली वासना है, तो हम बैठे हैं, बैठे ही रहेंगे और हमारी कर्म इंद्रियां हमको नहीं खींचेंगी। और ऐसे ध्यान हो कि कर्म इंद्रियों से हमको लेना नहीं है बाहर से, लेकिन अंदर जो है वो हम कर्म इंद्रिय द्वारा या हमारी इंद्रिय द्वारा बांट रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। लेकिन वो अनुभव तब होता है जितना हम साइलेंस में इस प्रकार का एकदम गहरा और सूक्ष्म अनुभव करते हैं। तो जितना हम ऐसी साइलेंस में जाएंगे ना, तब हमको आने वाले जो भी सीन है उसका एडवांस में पता चलेगा। जो भी आने वाली भविष्य की बात है, सीन है, उसको हमको पहले से पता चलेगा। जितना हम साइलेंस में रहते हैं, जितना हम कर्म इंद्रियों के रस से परे रहते हैं, उतना क्या आने वाला है, क्या होने वाले हैं, क्या चल रहा है अंदर किसी के भी, वो पता चलेगा। होने से पहले हमें पता चलेगा। तो उस समय ऐसा नहीं हमको अपने आप को भगाना है या दूर ले जाना है, लेकिन हमको कैसे उस परिस्थिति में हमको क्या करना है वो भी हमको पता चलेगा, उसका निवारण भी पहले से पता चलेगा, क्योंकि हम तैयार रहेंगे। तो इस प्रकार का सूक्ष्म पुरुषार्थ जितना करते रहेंगे उतना जैसे कि हम जैसे कि अपनी फाइनल स्थिति के नजदीक आ रहे हैं। तो ऐसे नहीं पूरा संगम युग समय पुरुषार्थ में ही जाएं और अंत में स्थिति का अनुभव करेंगे। और अभी तो मैं तो समझती हूं कि अभी समय है। वैसे तो वो इतने समय से बाबा कहते आए हैं, लेकिन दुनिया की परिस्थिति देखकर ऐसा लगता है कि अभी समय है, अभी भी हमें समय है। जो हम पुरुषार्थ करना चाहते हैं, जो पुरुषार्थ बाबा हमारे से चाहते हैं, और जिस पुरुषार्थ की संसार को जरूरत है, वो पुरुषार्थ करने का समय अब है। अभी थोड़े ही समय में ये समय पूरा होने वाला है। अभी थोड़े ही समय में हमको 24 घंटा सेवा में हाजिर रहना पड़ेगा, और वो भी स्थूल सेवा की बात मैं नहीं करती हूं। स्थूल सेवा करने का तो वो तो है ही, लेकिन अपनी मन की स्थिति की सेवा, और मन की स्थिति की सेवा भी तब होती है जब हमको विश्वास हो अपने मन की स्थिति के ऊपर। हम क्यों इतना प्रश्न करते हैं, हम क्यों नहीं कर पाते हैं मन के स्थिति से सेवा, मन की स्थिति की सेवा, क्योंकि सूक्ष्म में हमको भी विश्वास नहीं है अपनी मन की स्थिति पर। मन की स्थिति लेके ऊपर विश्वास, लेकिन रूहानियत पर विश्वास। हम दादियों को सुनते हैं ना, दादी जानकी को तो खास देखते हैं कि दादी कहेंगी मैं नींद में भी सेवा करती हूँ, मैं जाती हूँ किसी के पास और उसको स्वप्न में जाके कोई आएगे मेरे पास, मुझे कहेंगे दादी आप मेरे स्वप्न में आई, या दादी कहेंगी मैं स्वप्न में भी जाके सेवा करती हूँ, और हम समझेंगे वो कैसे होता है, हम कैसे करेंगे वो। लेकिन दादी को वो विश्वास, सूक्ष्मता पर विश्वास, वो सूक्ष्मता ऐसी है कि हम कोई बात को कर रहे हैं लेकिन हमको पता भी नहीं है। समझा मेरी बात? हमारे से बात कोई हो रही है लेकिन हमको जानबूझ के पता नहीं है, लेकिन विश्वास है कि हो रही है। समझा ये बात? सूक्ष्म है। अगर हम अपनी बुद्धि से समझेंगे ना, मैंने तो ये किया, आज तो मैं किसी के सपन में आई और उसको बापसा का साक्षात्कार कराया, तो क्या होगा? अभिमान आ जाएगा ना, और देह अभिमान आ जाएगा। चलो अभिमान नहीं तो देह अभिमान आ जाएगा, और फिर उसकी भी प्राप्ति गई, हमारी भी प्राप्ति गई, और हम नीचे की अवस्था में आ पहुंचे। तो लेकिन सूक्ष्म सेवा ये है, हमारे से सेवा होगी लेकिन हमको पता भी नहीं है, लेकिन हमको विश्वास है कि हो रही है। तो ये इतनी सूक्ष्मता है जो बाबा हमें आजकल अभ्यास हमारे से ये चाहते हैं। अभी जितना व्यस्त रहेंगे उतना इस अभ्यास की कमी रह जाएंगी, और बातों में व्यस्त रहेंगे तो अभ्यास की कमी रह जाएंगी।
भरी
तो अभी क्या याद रखेंगे जाने से पहले? पुरुषार्थ कैसा करना है? सूक्ष्म रीति से पुरुषार्थ ऐसा करना कि हमारे में परिवर्तन आता ही रहे और हम अपनी फरिश्ता की स्थिति पर पहुंचते रहे। घड़ी एक घड़ी, दूसरी घड़ी, तीसरी घड़ी। अच्छा, ओम शांति।